तारीख 31 अक्टूबर दिन गुरुवार, कार्यक्रम दिनभर के साथ मैं हूँ मानसी दास। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आज हुई नई शुरुआत, कई लोग खुश तो कई नाराज।
अगर बेल्जियम तो स्टेट है तो फिर यहाँ के लोगों को पूछने की जरूरत क्यों नहीं समझी?
हमारी अमन को आप खामोशी तकबीर मत कीजिए।
पाकिस्तान में चलती ट्रेन में आग, 70 से ज्यादा लोगों की मौत।
वो हमारे साथी थे और वो भी जख्मी थे दोनों। आग यानी मुंह पर भी आग लगी हुई थी, दाढ़ी भी जली हुई थी, कपड़े भी उनके सारे जले हुए थे।
महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में तनातनी जारी, आज भी नहीं बनी बात।
शिवसेना ने दिन शुरू होते ही कह दिया कि जो भी हमारी डिमांड है वो वही की वही है, इंक्लूडिंग कि हमें चीफ मिनिस्टरशिप भी आधे समय के लिए दी जाए।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। दोनों प्रदेशों को नए राज्यपालों में शपथ ली। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अब आरटीआई शिक्षा कानून समेत भारत के सभी कानून लागू होंगे। पाकिस्तान में तेजगाम एक्सप्रेस में आग लगने से कम 73 लोगों की मौत हो गई है और उनमें ज्यादातर की पहचान नहीं हो सकी है। तेजगाम एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी के बीच चलती है। रावलपिंडी की ओर जाते समय लियाकतपुर में उसकी 3 बोगियों में आग लग गई। रेलवे मंत्री शेख राशिद अहमद ने बताया कि यात्रियों की ओर से लाए गए गैस सिलेंडर की वजह से ट्रेन में आग लगी। यूरोप की शीर्ष मानवाधिकार संस्था ने ग्रीस से अजियन द्वीप से शरणार्थियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की है। यूरोपीय परिषद की मानवाधिकार आयुक्त दुंजा मिजातोविक ने कहा कि वहां शरणार्थी गुजर बसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां खचाखच भरे शिविरों में लोग मेडिकल सुविधाओं के बिना और गंदगी के बीच रह रहे हैं। इन शिविरों का दौरा करने के बाद उन्होंने स्थानीय समुदाय और मानवाधिकार कर्मियों के काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा,
This situation can have a very negative effect to the whole of Greece, but also
ये स्थिति न सिर्फ ग्रीस बल्कि पूरे यूरोप पर बहुत नकारात्मक असर डाल सकती है। मैं कहूंगी कि ये आपदा के मुहाने वाली स्थिति है। वहाँ लोग जिस हालातों में रह रहे हैं, जब आप उसे अपनी आंखों से देखते हैं तो समझ आता है कि ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि इस मसले पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। यूरोपीय परिषद की मानवाधिकार आयुक्त दुंजा मिजातोविक के शब्द। मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप ने कहा है कि इसराइल में बने स्पाइवेयर के जरिए दुनिया भर में 1400 लोगों को साइबर हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें भारतीय पत्रकार और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने हैकिंग के शिकार लोगों की पहचान जाहिर नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि उनकी संख्या मामूली नहीं है। इसराइली कंपनी एनएसओ ने आरोपों से इनकार किया है। यही कंपनी सरकारी एजेंसियों को अपने स्पाइवेयर बेचती है। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली वैश्विक संस्था की प्रमुख ने कहा है कि दुनिया भर के करीब 1/4 सूअरों की अफ्रीकी स्वाइन फीवर से मौत हो सकती है और ये बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। डॉक्टर मार्क शिप ने कहा कि इससे खाने की कमी हो सकती है और पोर्क का दाम भी बढ़ सकता है। उन्होंने अफ्रीकी स्वाइन फ्लू को कारोबारी पशुधन के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। ये बीमारी एशिया से तेजी से फैल रही है और चीन में पोर्क उद्योग की स्थिति खराब कर चुकी है। चीन में दुनिया के आधे से ज्यादा सुअर पाए जाते हैं। अफ्रीकी स्वाइन फीवर सुअरों के लिए जानलेवा है, लेकिन इंसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होता। संस्था की महानिदेशक मोनिक एलॉयट ने कहा, हम वाकई एक वैश्विक खतरे का सामना कर रहे हैं और हमें इससे प्रभावित देशों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो दूसरे देशों तक ये बीमारी फैलाने के मुख्य स्रोत हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी देश इस बीमारी से अछूते रहें। ये थे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की महानिदेशक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी ने अगले महीने होने वाले आम चुनावों के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। लेबर पार्टी ने लोगों से वादा किया है कि उनके हितों का ध्यान रखेगी और उनकी सरकार कुछ लोगों की जगह बहुत से लोगों के लिए काम करेगी। जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि ये चुनाव ब्रिटेन में बदलाव लाने का एक मौका है। उन्होंने सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी पर ब्रेग्जिट के मसले को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया। कॉर्बिन ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी अगले 6 महीने के भीतर एक बेहतर समझौता करेगी। बीबीसी समाचार।
بی بی سی ہندی سے دن کی پہلی دن کی دوسری سبھا دن بھر سن رہے سبھی شروتاؤں کو مانسی داش کا ابھیوادن. آدھے گھنٹے کا یہ کارکرم آپ ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی .com پر بھی لائیو سن سکتے ہیں. کارکرم کی شروعات جموں کشمیر کی خبر سے. جموں کشمیر اور لداخ آج دیش کے آٹھویں اور نویں کیندر شاست پردیش بن گئے ہیں. آج گریش چندر مرمو نے جموں کشمیر کے پہلے راجپال اور آر کے ماتھر نے لداخ کے پہلے راجپال کے طور پر شپتھ لی. اسی سال اگست 5 کو بھارت سرکار نے جموں کشمیر کے وشیش درجے کو ختم کرنے والے سمویدھان کے انوچھید 370 کو ہٹا دیا تھا. پہلے سنیے دلی میں آیوجت ایک سماروہ میں گرہ منتری امت شاہ نے کیا کہا.
جموں اور کشمیر کا بھارت کے اندر ولی کرن تو ہوا, بھارتی سنگ کے ساتھ ولی نکرن تو ہوا, مگر دھارا 370 اور 35A کے کارن جموں کشمیر جیسے ایک ہمارے لیے سمسیا بن کر رہ گیا. 5 اگست وہ دن ہے جس دن دیش کی پارلیمنٹ نے دھارا 370 اور 35A کو ہٹا کر سردار صاحب کا ادھورا سوپن پورا کرنے کا کام کیا.
370 کے ہٹانے سے پہلے اور بعد جموں کشمیر میں بھاری فوج کی تعیناتی رہی اور سینکڑوں ستھانیہ نیتاؤں کو یا تو حراست میں لیا گیا یا پھر نظر بند کیا گیا. کشمیر کے کئی علاقوں میں سرکار ویرودھی پردرشن بھی اس دوران ہوئے. لیکن کیا اب نیا کیندر شاست پردیش بننے کے بعد یہاں کچھ بدل جائے گا؟ اس نئے بدلاؤ کو کشمیر کے لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سنیے ہمارے سہیوگی ماجد جہانگیر کی رپورٹ.
گروار دن کے 1 بجے سری نگر کے راج بھون میں جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے نئے لیفٹیننٹ گورنر جی سی مرمو نے, جبکہ لداخ یونین ٹیریٹری میں صبح 7:30 بجے نئے لیفٹیننٹ گورنر آر کے ماتھر نے ایک ایسے سمے میں شپتھ لی جب کشمیر کے زیادہ تر مین اسٹریم نیتا گرفتار ہیں. ان سبھی نیتاؤں کو 5 اگست سے پہلے ہی گرفتار کیا گیا تھا. بھارت سرکار کے اس فیصلے کے خلاف کشمیر میں عام لوگوں نے سخت روش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سرکار کچھ بھی کریں کشمیریوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک عام ناگرک جاوید احمد کہتے ہیں,
جو ہمیں پچھلے 3 مہینوں سے یہی دیکھا کہ کرفیو جس طرح یہاں سٹرکشن تھا, کمیونیکیشن بند یا باقی جس طرح بھارت سرکار نے کیا, ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھپ چھاپ بیٹھے ہیں. ہماری امن کو آپ خاموشی تکبیر مت کیجیے. ہماری خودارت جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے لیڈروں نے رکھا ہے. یا ہمیں پھر ہمیں موقع دیجیے, یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. ہمیں موقع دیجیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں گے, بھارت سرکار کے ساتھ رہنا چاہیے یا آزاد رہنا چاہیں گے. اس وقت ہمیں یہ اپنا یہ رائٹ ہے, ہم کیا کریں گے. لیکن یہ اس طرح ہمیں دبا نہیں سکتے ہیں.
ایک چھاتر قرت العین کا کہنا تھا کہ بھارت سرکار نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے کشمیر کے لوگوں سے پوچھا کیوں نہیں.
جو گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے یو ٹی بنانے کا, وہ آف آل میں یہ کہنا چاہتی ہوں, اس نے کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی. جو یہ بول رہا ہے کہ ہمارا جو اپنا کانسٹیٹیوشن تھا, پورے انڈیا کا اور کانسٹیٹیوشن تھا, وہ ہمیں رائٹ دیتا ہے. اگر تمہارے پاس کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ کورٹ کے پاس جا سکتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن جو گورنمنٹ نے ابھی ڈیسیجن لیا, اس نے کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھ. جو یہاں کے لوگ ہیں, جن جو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بولتے ہیں ویلفیئر آف دا اسٹیٹ. اگر ویلفیئر آف دا اسٹیٹ ہے تو پھر یہاں کے لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں سمجھی.
گور طلب ہے کہ بھارت سرکار نے 5 اگست کو جموں کشمیر سے انوچھید 370 کو ہٹایا ہے اور آج سے جموں کشمیر اور لداخ کو الگ الگ یونین ٹیریٹریز بنایا ہے. 5 اگست سے کشمیر گھاٹی میں کرفیو پرتیبند اور ہڑتال سے کشمیر کا عام جن جیون است ویست ہو کر رہ گیا ہے. سرکار نے آج کشمیر گھاٹی میں سرکشا کو سخت چوکنا کیا تھا اور راج بھون تک جانے والے سبھی راستوں پر بیریکیڈز لگائے تھے. جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنانے پر کیا جموں کشمیر کے بھوش پر کوئی فرق پڑے گا؟ کشمیر کے ورشٹھ پترکار اور وشلیشک ہارون ریشی کہتے ہیں,
ظاہر ہے بھوشی نہیں بلکہ اس کا حال بھی بدل چکا ہے. پہلے ریاست تھی اور اس کا درجہ گٹ چکا ہے, اب یونین ٹیریٹری کہلائے گی. نارملی ہوتا یہ ہے کہ یونین ٹیریٹریز میں یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سٹیٹ ہوڈ دیا جائے, یعنی ان کا درجہ بڑھا کر ریاست کا درجہ دیا جائے انہیں. لیکن یہاں الٹا ہوا ہے, مکمل ریاست تھی پچھلے 70 سے 60 دہائیوں سے اور اس کا درجہ گٹا کے یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا گیا ہے اسے. اس اقدام کے نتیجے میں یقینی طور پر یہاں کے حالات پہ سیاسی اور اس کے مستقبل پر اثرات مرتب ہوں گے.
کشمیر میں 5 اگست سے انٹرنیٹ اور پری پیڈ موبائل سیوائیں بند ہیں. ماجد جہانگیر, بی بی سی, سری نگر.
नया केंद्र शासित प्रदेश बनने पर लद्दाख में क्या माहौल है, इसका जायजा लेने के लिए बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा लेह पहुंचे। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
आज लद्दाख का फॉर्मली पहला दिन है यूनियन टेरिटरी के हैसियत से। आज सुबह आर के माथुर ने लेह में एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से लेह में शपथ ग्रहण किया और अभी मैं हूँ लेह मार्केट में, जहाँ पे आप देख रहे हैं चारों ओर जश्न का माहौल है। आप स्कूल स्टूडेंट, बिजनेसमैन, यहाँ के दुकानदार इस जश्न में मौजूद है। ये जश्न ऑर्गेनाइज करने वाले हैं बीजेपी, तो यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता, एमपी, सारे बीजेपी रिलेटेड जितने भी ओहदेदार लेह में है वो यहाँ पे मौजूद थे। जहाँ तक लेह में सेलिब्रेशन चल रही है, वहीं पे लेह में कुछ लोगों ने कंसर्न भी रेज किए हैं कि लद्दाख का स्पेशल स्टेटस जाने से यहाँ के लोगों को शायद सफर करना पड़े। और उसके साथ साथ कारगिल की जहाँ तक हम बात करें, कारगिल जहाँ पे लद्दाख की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कारगिल से आती है, कारगिल में आज तीसरा दिन है बंद का। वो बंद की कॉल ज्वाइंट एक्शन कमेटी कारगिल की तरफ से आई थी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में कारगिल के सारे पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस बॉडीज को मिला के ज्वाइंट एक्शन कमेटी कारगिल बनती है। उनका ये कहना है कि कारगिल ने आज तक कभी यूनियन टेरिटरी की मांग नहीं की थी, ये हम पे थोपा गया। उनका ये भी कहना है कि हमने कुछ डिमांड्स का लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई। ये लद्दाख के दो चेहरे हैं, दो चेहरे, एक लेह जहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है और एक कारगिल जहाँ पे बंद और हड़ताल है। मैं आमिर पीरजादा, बीबीसी लेह लद्दाख।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिल गए नए उपराज्यपाल। इधर पाकिस्तान ने आज एक बार फिर बयान जारी कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के भारत सरकार के फैसले की आलोचना की है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत सरकार कश्मीर में आबादी का स्वरूप बदलना चाहती है। अब बात पाकिस्तान की, जहां आज एक चलती ट्रेन में आग लग गई। आग लगने के कारण कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। कराची और रावलपिंडी के बीच चलने वाले तेजगाम एक्सप्रेस ट्रेन की 3 बोगियों में रहीम यार खान के पास आग लग गई। सबसे पहले सुनते हैं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की आवाजें।
वो हमारे साथी थे और वो भी जख्मी थे दोनों। आग यानी मुंह पर भी आग लगी हुई थी, दाढ़ी भी जली हुई थी, नहीं कपड़े भी उनके सारे जले हुए थे और वो बता रहे थे कि भाई 50 साथी हमारे थे जो अंदर शहीद हुए।
अचानक शोर शुरू हुआ, मालूम हुआ तो पता चला कि पिछले डिब्बे में आग लगी है। ये बड़ी मुश्किल से तो हमारी जान बचाई साथियों ने, बाद साथियों ने जो है ना वो चेन खींचे, इसलिए कि अफरा तफरी का आलम था और बहुत से साथी जो है वो अंदर रह गए हैं, कुछ बेहोश हो गए और बहुत अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए।
इस मामले में ताज़ा जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी से।
सुबह ये ट्रेन का हादसा हुआ था और अभी तक भी जो है वो रेस्क्यू एक्टिविटी चल रही है। बहुत से लोग हैं जो इंजर्ड हैं और डेड जो हैं वो बहुत से हैं। सारा दिन जो हलाक होने वाले हैं उनका नंबर जो है वो बढ़ता रहा है। लोगों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है और चूंकि ये एक्सीडेंट जो है ये रहीम यार खान के पास एक इलाका है लियाकतपुर, वहां पे ये पेश आया है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा शहर है वो रहीम यार खान है। तो लोगों को इवैक्यूएट करना उस ट्रेन में से, जल्दी ट्रेन में से फिर उन्हें हॉस्पिटल्स पहुंचाना, तो जाहिर है कि पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो गवर्नमेंट के लिए ही था। रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने विजिट किया है और रेलवे मिनिस्टर जो है वो उनका मानना ये है, उनका क्लेम ये है कि ये जो आग लगी है ये मुसाफिरों की वजह से ही लगी है, क्योंकि एक तबलीगी जमात के बहुत से लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और उनके साथ कुछ सिलेंडर्स थे जिसकी वजह से ये धमाका हुआ।
तमाम लोगों के लिए 15 लाख रुपया जो लोग जाम भाकू हैं उनके लिए और 5 लाख रुपया जख्मियों के लिए ऐलान किया जाता है। आर्मी जो है मौके पर इमदाद के लिए और दूसरी इमदादी जमातें पहुंच चुकी हैं। मैं खुद भी आर्मी चीफ का मशकूर हूं, उन्होंने मेरी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया, लेकिन ये हमारी कोताही है कि इसमें ये चूड़े ले जाने में कामयाब हो गए और सिलेंडर के फटने से छोटे स्टेशनों पर हमारे पास स्कैनर नहीं है, बड़े 7 के 7 डिविजनल हेडक्वार्टरों पर स्कैनर है। ये एक खूनी हादसा हुआ।
लेकिन एक जो है वो और भी बात सामने आ रही है, ऐसे लोग हैं जो ट्रेन में सफर कर रहे थे उनके क्लेम्स जो है वो कुछ मुख्तलिफ हैं और उनका कहना ये है कि ये जो आग है इसके लगने से पहले, धुआं भरने से पहले ही किसी चीज के जलने की स्मेल आ रही थी ट्रेन में।
मैं बोगी नंबर 14 में था, आवाज आई कि यार शॉर्ट सर्किट हो गया। 12 नंबर डब्बे में शॉर्ट सर्किट हो रहा था, कुछ लोग गलत उड़ा रहे हैं कि यहाँ पर सिलेंडर फट गया। ऐसी कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पर रात से ही कुछ जलने की बू आ रही थी। राघव को बताया भी गया था कि कुछ जलने की बदबू आ रही है, मगर ये लोगों ने नहीं तवज्जो दी। तो सुबह हम देखे तो यहाँ पर बोगी नंबर 12 में आग लगी, और ये कुछ लाशें हमने खुद छोड़ के आए, जिनको मेरे दोस्त को यार भी थे, मेरे को खास सारे लोग भी थे, उनको अभी लियाकतपुर में मैं खुद छोड़ के आया हूँ। अभी बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यहाँ पर मतलब भी जो आए पहुँचे, जो लोग पहुँचे बहुत लेट पहुँचे।
लेकिन मामला असल क्या है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, और जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि 15 दिनों में इंक्वायरी को कंप्लीट किया जाएगा और फिर जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा।
पाकिस्तान में ट्रेन में लगी आग, ताज़ा जानकारी दे रही थी इस्लामाबाद से शुमाइला जाफरी। कल यानी 1 नवंबर से सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश पर्व शुरू होगा। इससे पहले चर्चा में है वो जगह जहां से गुरु नानक देव दुनिया भर में सिख धर्म का प्रचार करने निकले थे। ये जगह है कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी, जहां प्रकाश पर्व के शुरू होने से पहले लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने यहां आने वालों के रहने और खाने पीने की सुविधा का खास इंतजाम किया है। यहां की गई व्यवस्था के बारे में श्रद्धालु क्या सोचते हैं, सुनिए।
हम लोग सारे जलंधर शहर से आए हैं अपने स्कूल के बच्चों को लेके, और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सारा शहर ही गुरुद्वारा बना हुआ है। मुझे लगता है कि पंजाब में रहने वाले क्या सब किसी को दूर दूर से इसको देखने एक बार जरूर आना चाहिए। ज़्यादा ऐसा वातावरण मिला कि दिल करता है कि 1 घंटा या 2 घंटे हम एक जगह बैठ जाएं और यहीं रह के जाएं। बहुत ही अच्छा है जी।
यहाँ पे जो इतनी सफाई है, इतना प्रबंध किया गया है, और दूसरा इको फ्रेंडली फैसिलिटीज जो दी गई है अपने ट्रैवलर्स को, वो भी बहुत अच्छा लगा। और एक जो नई बात मुझे देखने के लिए मिली वो है, यहाँ कॉरपोरेशन के अधिकारी रिक्वेस्ट करते रहे कि आप प्लास्टिक को यूज नहीं करेंगे।
प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की है उनका जायजा लिया बीबीसी संवाददाता नवदीप कौर ग्रेवाल ने। अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की और पूछा कि इस छोटे शहर में कितनी बड़ी और विस्तृत व्यवस्था की गई है लोगों के लिए।
यहाँ पे सुल्तानपुर लोधी में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के संदर्भ में काफी तैयारियां की गई हैं। हिस्टोरिकल रेलिवेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के बहुत साल गुजारे हैं। उनकी बहन बेबे नानकी जी की पुरातन घर है जहाँ पे वो रहती थी, फिर यहीं पे उन्होंने मोती खाने में काम किया था। 3 दिन तक यहाँ पे गुरुजी अलोप रहे थे और उसके बाद उन्होंने चारों दिशाओं में अपनी यात्राएं शुरू की थी। जो इस बार प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है तो उसके लिहाज से यहाँ पे तैयारियां काफी की गई हैं। लोगों के रुकने के लिए 3 टेंट सिटीज तैयार किए गए हैं, 35,000 लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में ये सहूलत लोगों को दी गई है। जो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस हैं उनके कमरों को भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोग उनमें रुक सके। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, यहाँ के लोगों ने अपने घरों के द्वार खोल दिए हैं आम लोगों के रुकने के लिए। और सबसे मुश्किल बात ये थी प्रशासन के लिए कि ये जो एरिया है बहुत छोटा है, और मान लीजिए कि इसमें अगर 15-16 हजार की पॉपुलेशन है इस शहर की, और हर रोज इन 15 दिनों में 3-4 लाख लोग यहाँ पे आएंगे, तो ऐसे में मुश्किल ये थी कि लोग कम्यूट कैसे करेंगे, ट्रैफिक की कैसे व्यवस्था रहेगी। तो उसके लिहाज से बहुत काम यहाँ पे किया गया है। आईजी नौनिहाल सिंह से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि शहर के बाहर ही 3 बड़ी पार्किंग बनाई गई है जहाँ पे लोगों के व्हीकल्स रोक दिए जाएंगे। उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा जो फ्री में होगा, वो उनको इनर पार्किंग्स में लेके आएंगे और वहां से फिर लोगों को ई रिक्शाज में या फिर पैदल वो गुरुद्वारा साहिब में जा सकेंगे। लोगों ने आना शुरू भी कर दिया है, हालांकि जो पंडाल है, टेंट सिटी है, उन सब में लोग 1 तारीख से लोग आ सकेंगे और पंडाल 5 तारीख से हम लोगों के लिए खुलेगा। तो इससे पहले ही लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया है। सारी बिल्डिंग्स को व्हाइट कलर में पेंट किया गया है और अलग अलग दीवारें, खास करके गुरुद्वारों की दीवारों पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि सिख हिस्ट्री को दर्शाती हैं।
लाखों सिख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सुल्तानपुर लोधी, जानकारी दे रही थी नवदीप कौर ग्रेवाल। आज से सप्ताह भर पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली। पर अब दोनों पार्टियां मिलकर सरकार तो बनाना चाहती हैं, लेकिन पेंच फंसा है सीट शेयरिंग पर, और मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा इस सवाल पर। आज दिन भर दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने इस पर बहस होती रही। अब से घंटे भर पहले मैंने बात की मुंबई में मौजूद बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर से और उनसे पूछा कि क्या सरकार बनाने के कुछ आसार आज नजर आए।
इसका जवाब सीधा है, नहीं। ऐसे कोई भी आसार आज भी नहीं दिखाई दिए। आज भी कल जिस तरह से झगड़े शुरू थे बीजेपी और शिवसेना के बीच में, उसी तरह के झगड़े शुरू रहे हैं। हालांकि शिवसेना ने अपने तेवर और भी तीखे कर दिए हैं, क्योंकि कल कुछ तरह के बयान जो शिवसेना के नेता संजय राउत से आए थे, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद शिवसेना ने कुछ नरम भूमिका अपनाई है और शायद वो पर्दे के पीछे से कुछ अलग अपनी निगोसिएशंस चला रही है। लेकिन आज शिवसेना ने दिन शुरू होते ही कह दिया कि हम किसी भी तरह का नरम रुख नहीं अपना रहे हैं, जो भी हमारी डिमांड है वो वही की वही है, इंक्लूडिंग कि हमें चीफ मिनिस्टरशिप भी आधे समय के लिए दी जाए।
50-50 का फॉर्मूला जो चुनाव से पहले तय हुआ था, मुख्यमंत्री ने भी कबूला है, हम नहीं पीछे हटे हैं। अगर पीछे हटे हैं अपने वादे और वायदे से, वो हमारा मित्र पक्ष है। 105 विधायक दल का विधायकों का समर्थन से अगर किसी को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद मिलता है, तो मुझे एक बार संविधान की किताब देखनी पड़ेगी।
आज शिवसेना ने अपना जो हाउस ऑफ द लीडर है उसका भी उनका चुनाव था, और जो एकनाथ शिंदे जो पिछली दफा भी उनके हाउस ऑफ द लीडर थे, तो उनको चुना है। ये चर्चा हो रही थी कि शायद आदित्य ठाकरे को भी इस पद के लिए चुना जाएगा, उनका नाम आगे आ रहा था। लेकिन इस समय जो भी जिससे भी पूछा जा रहा था कि क्या शिवसेना बीजेपी के साथ अपना रुख नम करेगी, कोई किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सब ये कहते रहे कि उद्धव ठाकरे डिसीजन लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने किसी भी तरह की बात नहीं की, कोई भी बयान नहीं दिया।
बीजेपी की तरफ से आज कोई बयान आता दिखाई नहीं दिया, क्या बीजेपी ने कुछ बोला है पत्रकारों से या कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो 50-50 जो की शिवसेना की मांग है उस पर वो राजी है?
बीजेपी का जो गुट है तो आज वो पूरा उनके खेमे में पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई भी कुछ भी नहीं बोला। कल जब देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने विधिमंडल का नेता चुना था, तब देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में कहा था कि महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा और किसी भी तरह की अफवाहें जो है वो गलत है। हालांकि उसके बाद वो कुछ भी नहीं कह रहे, वो वेट एंड वॉच का गेम जो है वही खेल रहे हैं। और जैसा उनके खेमे से पता चल रहा था कि शिवसेना को कुछ अगर मिनिस्ट्री कैबिनेट की सीटें उस पर बात हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह सीएम यानी मुख्यमंत्री पद की जो डिमांड है उसके ऊपर बीजेपी झुकना नहीं चाहती। ये भी नहीं पता कि अमित शाह मुंबई कब आएंगे और कब सरकार का शपथ विधि होगा।
महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद जारी, जानकारी दे रहे थे मयूरेश कोन्नूर। और अब आपकी चिट्ठियां,
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ स्टूडियो में मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे। और आज सबसे पहले शुरुआत ईमेल से करते हैं राजेश जी।
जी,
और ये है अल्लाहगंज शाहजहांपुर से भेजा है प्रमोद मिश्र ने, और ये लिखते हैं कि मैं 30 वर्ष पुराना बीबीसी हिंदी कार्यक्रम का श्रोता हूँ। अभी तक मुझे बीबीसी में स्पष्टता एवं संतुलन जो है वो दिखाई देता है, परंतु कुछ समय से स्पष्टता तो है परंतु संतुलन की कमी दिखाई देती है। और ऐसा क्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम संवाददाता ज़्यादा हैं?
आपने एक बहुत ही दिलचस्प बात पूछी है। बीबीसी दुनिया की अकेली ऐसी संस्था है जिसकी एक संपादकीय नीति यानी कि एडिटोरियल गाइडलाइन है, और वो प्रकाशित है, जिसको कि आप गूगल करके ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम उसी के हिसाब से लगातार काम करते हैं और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है या किसी और जाति या धर्म का है। हम अपना काम अपनी बीबीसी की संपादकीय नीति के अनुरूप ही करते आए हैं और वैसे ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और वो नीतियां क्या हैं वो आप पढ़ सकते हैं।
और आगे की चिट्ठी पढ़ें तो ये चिट्ठी लिखी है एहसान असगर ने, और ये मलकापुर से लिखते हैं, और ये कह रहे हैं कि इस बार की विवेचना अच्छी लगी। यशवंत सिन्हा जी के जीवन के विषय में पता चला कि कैसे उन्होंने आईएएस ऑफिसर से देश के वित्त मंत्री तक का सफ़र तय किया, और इन्होंने वसतुल्ला खां की डायरी के बारे में लिखते हुए मेरे ख्याल से शब्द गलत लिख दिए हैं, उस्त सर की डायरी लिखा है इन्होंने।
अच्छा।
पर मेरे ख्याल से वसतुल्ला खां की डायरी की ही बात कर रहे हैं।
उनका नाम वसतुल्ला खान है, बहुत सारे हमारे श्रोता उनका नाम गलत लिखते हैं। वसतुल्लाह का मतलब होता है जिसको मैंने वसत साहब से खुद पूछा एक दिन कि आपके नाम का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि वसतुल्लाह का मतलब, वो उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, तो उन्होंने न सिर्फ नाम का मतलब बताया बल्कि उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया और उन्होंने कहा कि मेरे नाम का अर्थ होता है विस्तारेश्वर, यानी ईश्वर का विस्तार,
विस्तारेश्वर,
तो वसतुल्लाह।
और शायद इसीलिए वो डायरी भी लिखते हैं, देखिए ये नियति है, और वो लिखते हैं कि इस बार इनकी डायरी उन्हें पसंद नहीं है, वजह नहीं बताई इन्होंने।
कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता है, हो सकता है कि इस बार की डायरी और बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आई हो, इनको नहीं आई। कई बार जब इनको पसंद आती है तो कई लोग शिकायत करने वाले भी आते हैं कि हमें पसंद नहीं आई, तो ऐसा असंभव है कि हम ऐसा काम कर सकें जो सबको पसंद आए। जो लोग तारीफ़ करते हैं वो तारीफ़ अपनी जगह, और आलोचना भी वाजिब है और जायज़ है।
तभी इन्होंने लिखा भी है कि हर बॉल तो बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे नम्रता रिया लिखती हैं, ये ईमेल उन्होंने भेजा है कि मेरा नाम नम्रता रिया है, मैं बीबीसी के नियमित श्रोता हूँ। आजकल मुझे बहुत सारे लोगों ने ये हिदायत दी कि बीबीसी सुनना बंद कर दो, बीबीसी बायस्ड है। पहले तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद और लोगों ने मुझसे बोला और मैंने इस पर विचार किया, और मैं ये बीबीसी को कहना चाहती हूँ कि आप अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने कई पुराने श्रोता भी इसी कारण खो रहे हैं, लेकिन मैं आपके नियमित श्रोता हूँ।
बहुत धन्यवाद नम्रता जी। एक तो ये अच्छी बात है कि आपने इतनी ईमानदारी और साफ गोई से ये ईमेल हमें भेजा है, और हमें ये अच्छा लगा कि हम जानते हैं कि महिला श्रोताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे सभी कार्यक्रमों को गौर से सुनें, उसकी पूरी भरपूर आलोचना करें। अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो हमें ज़रूर बताएं कि उसमें क्या गलती है, क्या कमी है, और हमें जितने ज़्यादा उदाहरणों के साथ आप पत्र लिखेंगी कि कहाँ आपको लगा और क्यों आपको लगा कि बीबीसी हिंदी का रवैया पक्षपातपूर्ण, जिसको आप बायस्ड कह रही हैं, वो है, तो हम आपको और बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआती पत्र के जवाब में भी मैंने कहा था कि हम एक एडिटोरियल गाइडलाइन के तहत काम करते हैं, और वो गाइडलाइन पूरी दुनिया में सबके पढ़ने के लिए उपलब्ध है।
और आगे बढ़े तो मुझे लगता है इनके सवाल का एक जवाब तो जम्मू कश्मीर से ही आ रहा है। डॉक्टर लियाकत जाफरी लिखते हैं पुंछ जम्मू कश्मीर से, और ये कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ। फिलहाल जम्मू में रहता हूँ, करीब 3 महीने होने को हैं, यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, सो करीब 20-25 साल बाद वापस रेडियो की तरफ आना पड़ा। पहले तो बाज़ार में रेडियो तलाशने में ही काफ़ी समय चला गया, लेकिन फिर मुझे रेडियो मिला और फिर मैंने बीबीसी हिंदी के कई कार्यक्रम सुने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बीबीसी की जो डेली रिपोर्टिंग की है वो बहुत ही अच्छी और भरपूर रिपोर्ट की है, बल्कि जो और इर्द गिर्द की मीडिया है उन्होंने रिपोर्टिंग अच्छी तरह से नहीं की। और रोज़ाना शाम 7:30 बजे दिन भर 1 घंटे की आपकी जो स्पेशल ट्रांसमिशन थी वो भी बेहद पसंद आई।
बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कि नम्रता जी का जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लियाकत साहब ने लिख दिया है सब कुछ। तो कुछ लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग हमें कम पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, और सबकी अपनी अपनी राय है, सबको आज़ादी है कि वो क्या पसंद करें और क्या नापसंद करें। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमें ये ज़रूर बताएं तर्कों और तथ्यों के आधार पर कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये बहुत लोग लिख देते हैं अक्सर, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये नहीं बताते। उनको बताना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए, वक्त काफ़ी हो चुका है, तो चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें। पत्र लिखने के लिए यानी कि डाक से चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता वही है, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। पाकिस्तान में तेजगाम एक्सप्रेस में आग लगने से कम 74 लोगों की मौत हो गई है। यूरोप के शीर्ष मानवाधिकार संस्था ने ग्रीस से अजियन द्वीप से शरणार्थियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की है। मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप ने कहा है कि इसराइल में बने स्पाईवेयर के जरिए दुनिया भर में 1400 लोगों को साइबर हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें भारतीय पत्रकार और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला रविशंकर कुमार ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सवेरे। फिलहाल मानसी ताज समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।